ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सशस्त्र पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त बनाने के लिए कानून बनाने का सांसदों ने दिया सुझाव। सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित विधेयक में कमियों को दूर कर इसे पूर्णता दी जाएगी, गृहमंत्री रमेश लेखक का कथन। नेकपा माओवादी केन्द्र ने शुरू किया जनता के साथ माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान। श्रमजीवी पत्रकार आईन में संशोधन कर इसे क्रियान्वयन योग्य बनाने की सरकार वालों ने रखी मांग। और यूक्रेन में शांति और नाटो सदस्यता के लिए पद छोड़ने को तैयार है राष्ट्रपति जेलेंस्की का कथन। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा में सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक 2081 पर विमर्श करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। बैठक में प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा के दौरान उठे सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि नेपाल की शांति सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियंत्रण जैसे कार्यों को सुचारू करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से कानूनी व्यवस्था में संशोधन और एकीकरण किया जाएगा। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि विधेयक में मौजूद कमी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए इसमें संशोधन की तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व विधेयक के ऊपर विचार विमर्श के दौरान सांसदों ने सशस्त्र प्रहरी बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के हिसाब से कानून बनाने की बात पर जोर दिया था। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने भ्रष्टाचार को कम करने, ग्रे लिस्ट से देश को हटाने, विकास निर्माण, विकास जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। पत्रकारों के लिए निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक के लागू न हो सकने को सरकार वालों ने मुख्य चुनौती कहा है। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति द्वारा आज काठमांडू में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में सरकार वालों ने श्रमजीवी पत्रकार आईन को संशोधित कर क्रियान्वयन योग्य बनाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध करने को लेकर मीडिया हाउस को जिम्मेदार बनाना होगा। कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार आईन को समय सापेक्ष बनाने को लेकर सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि आईन संशोधन के लिए लंबा समय लगता है, इसलिए तत्काल समिति द्वारा किए जा रहे कामों के दौरान मुश्किलों और उलझनों को सुलझाने के लिए मंत्रालय तैयार है। साथ ही उन्होंने इसके लिए आवश्यक तैयारी करने का समिति से आग्रह भी किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना आयोग के प्रमुख आयुक्त डॉ सुरेश आचार्य, संचार मंत्रालय की सचिव राधिका अर्याल, पीएसपी नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट लगायत ने अपने अपने विचार रखे थे। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि वे सरकार बदलने के पक्ष में नहीं हैं। पार्टी द्वारा आज कचन कबल से शुरू किए गए जनता के साथ माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेकपा माओवादी केंद्र अब जनता के साथ चलने का निर्णय ले चुकी है। ये बताते हुए कि अतीत में नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता सहयोग के दौरान पार्टी को जनता से दूर होना पड़ा था, उन्होंने पिछली गलतियों और कमियों की आत्मालोचना और समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मित्र राष्ट्र भारत, भूटान और मालदीव के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रतिनिधिमंडल ने आज शिष्टाचार भेंट की। भाग लेने के लिए नेपाल आए प्रतिनिधिमंडल ने आज महाशिवरात्रि और नेपाली सेना के स्थापना दिवस के 262वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर काठमांडू में आयोजित होने वाले युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 में भाग लेने आए प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात की। मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से नेपाली सेना ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के साथ आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ कैडेटों के बीच कौशल, संस्कृति और परंपराओं के आदान प्रदान का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नेपाली सेना के निमंत्रण पर 9 फाल्गुन को नेपाल दौरे पर आए। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह ने कहा कि अर्थतंत्र को चलायमान करने के लिए स्थानीय उत्पादों का प्रवर्धन करना होगा। सरलाही के लालमंदी में निर्मित बहुउद्देशीय व्यापारिक भवन का उद्घाटन करते हुए मंत्री सिंह ने विश्वास जताया कि ये व्यापारिक भवन इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि
हजुर राम्ररी पुगे ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड
नमस्ते बाबुजू
नमस्ते आउनु न भित्रै
हुन्छ बाबुजू
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला
है उहाँ त बिहानै हो हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न म खाना तयार गर्दै गर्छु है
हस् हस् भाउजू
ओए वाइफाई होला नि पासवर्ड माग्न
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि
ए हो र
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
अब बाकी समाचार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणा देउवा और स्विट्जरल्याण्ड के विदेश मन्त्री इग्नाजियो डेनिल ले जियोवानी कैसेस के बीच आज जेनेवा में द्विपक्षीय भेंटवार्ता हुई संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषद के 58वें उच्चस्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए जेनेवा में रही मंत्री डॉ देउवा और स्विस विदेश मंत्री के बीच साइडलाइन भेंटवार्ता हुई है उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि नेपाली उत्पादों के उपयोग और उपभोग को प्राथमिकता देने की जरूरत है कंचनपुर के महेंद्रनगर में आज से शुरू हुए सुदूर पश्चिम स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला में मंत्री भंडारी ने कहा कि 6 अरब से अधिक की लागत में निर्माण होने वाला दोधारा चांदनी में सूखा बंदरगाह का निर्माण 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा तापलेजुंग में पाथीभरा मुक्कुमलुंग केबल कार खारिज करने की मांग करते आ रहे आंदोलनरत समूह को सरकार द्वारा गठित वार्ता समूह ने काम स्थगित करने की शर्त के साथ पुनः वार्ता के लिए आह्वान किया है सरकारी वार्ता टोली के संयोजक प्रेम प्रसाद भट्टराय द्वारा जारी किए गए बयान में पुनः वार्ता के लिए आह्वान किया गया है महाशिवरात्रि के आगमन पूर्व पशुपति क्षेत्र में आज शोभा यात्रा निकाली गई पशुपति क्षेत्र विकास कोष के आयोजन में पशुपतिनाथ मूल मंदिर के आगे के पश्चिम द्वार से शुरू हुई शोभा यात्रा का शुभारंभ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने किया म्यागदी के प्रवेश द्वार पर स्थित बेनी नगरपालिका 8 के कालीपुल बस पार्क क्षेत्र की सड़क को ब्लैकटॉप करने के लिए ठेका समझौता हुआ था लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है चीन और भारत को जोड़ने वाले राष्ट्रीय गौरव के कालीगंडकी कॉरिडोर सड़क बेनी जोंगसोम कोरला सड़क परियोजना के तहत पर्वत से होकर म्यागदी में प्रवेश करने वाले मोटरेबल पुल से बगरफाट को जोड़ने वाले झोलंगे तक की 500 मीटर सड़क को 11 मीटर चौड़ा कर एस्फाल्ट प्रविधि से ब्लैकटॉप करने का ठेका समझौता हुआ था 92,41,000 रूपये में कंपनी के साथ हुए समझौते की अवधि गत माघ मास के अंत में समाप्त हो गई लेकिन ब्लैकटॉप नहीं किए जाने के कारण जुर्माना भरमाना शुरू किया गया है ये जानकारी योजना प्रमुख ध्रुव कुमार झा ने दी अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन में शांति स्थापित करने और नाटो सदस्यता के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है और इसके लिए वो कुछ रियायतें देने को तैयार है लेकिन ये रियायतें देश की संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता किए बिना होंगी जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अगर इस मुद्दे पर शांति स्थापित करने के लिए कुछ समझौता करना पड़े तो वो इस पर विचार करने को तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा और स्वतंत्रता सर्वोपरि है और किसी भी समझौते में इन मूल्यों से समझौता नहीं किया जाएगा ये बयान रूस के साथ चल रहे तनाव और युद्ध के संदर्भ में आया है यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष फरवरी 2022 से चल रहा है और इसके बीच कई दौर की वार्ताएं हुई हैं लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है जेलेंस्की का ये बयान शांति प्रक्रिया में नई गतिशीलता लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है जेलेंस्की के इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन संकट न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सशस्त्र पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त बनाने के लिए कानून बनाने का सांसदों ने दिया सुझाव सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित विधेयक में कमियों को दूर कर इसे पूर्णता दी जाएगी गृहमंत्री रमेश लेखक का कथन नेकपा माओवादी केन्द्र ने शुरू किया जनता के साथ माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान। श्रमजीवी पत्रकार आयन में संशोधन कर इसे क्रियान्वयन योग्य बनाने की सरोकार वालों ने रखी मांग। और यूक्रेन में शांति और नाटो सदस्यता के लिए पद छोड़ने को तैयार है राष्ट्रपति जेलेंस्की का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।